यशया अध्याय एक। आइए हम यशया की पुस्तक निकालें। यशया की पुस्तक भविष्यवाणियों का एक अद्भुत पुस्तक है और निस्संदेह एक सबसे बड़ी पुस्तक है। इसके अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने पुराने नियम के अन्य भविष्यद् वक्ताओं की तुलना में यशया को उद्धार संबंधी यीशु मसीह के कार्य का अधिक स्पष्ट दर्शन प्रदान किया था। वो आने वाला मसीहा के विषय में बहुत सी बातें लिखता है। प्रथम पद में वो अपनी भविष्यवाणियों का ऐतिहासिक समय दर्शाता है। उसकी भविष्यवाणी का आरंभ उज्जिया राजा के समय में हुआ, जो यहूदा का राजा था, अर्थात लगभग 760 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका अर्थ ये हुआ कि यशया का सेवा काल योताम, आहाज और हिजकिया राजाओं के राज्य तक रहा। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो हिजकिया के पुत्र मनश्शे के राज्य काल तक भविष्यवाणी करता रहा था। मनश्शे बहुत ही दुष्ट राजा था, जिसने कथित रूप में यशया को आरे से दो टुकड़े करने का आदेश दिया था, जिसके बारे में नए नियम की पुस्तक इब्रानियों अध्याय 11 में पुराने नियम के वीरों का उल्लेख है। ये एक रोचक बात है कि बाइबल अर्थात इब्रानियों की पुस्तक उन्हें विश्वास में दृढ़ पुरुष दर्शाती है, परंतु आधुनिक युग के कुछ प्रचारक सिखाते हैं कि उनमें विश्वास की कमी थी, क्योंकि उसमें ये उल्लेख है कि उन्होंने कष्ट उठाए। ये भी अद्भुत बात है कि विश्वास के शूरवीरों की पहचान उनके कष्ट थे। उसके आगे लिखा है कि उन्हें बंदी रखा गया, उनका पतरवाह किया गया, उन्हें आरे से काटा गया इत्यादि। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आरे से काटे जाने वाला यशया ही था, जिसको हिजकिया के पुत्र मनश्शे ने कटवाया था। यदि यशया का अपना वृत्तांत सुने तो वो केवल हिजकिया के राज्य काल तक का ही उल्लेख करता है। यदि आप पुराना नियम की पुस्तक दूसरा इतिहास अध्याय 26 से 32 तक पढ़ेंगे तो आपको यशया की भविष्यवाणियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान हो जाएगा। इन अध्यायों में उन राजाओं का और उनके राज्य का वर्णन है। हमारे अध्ययन में इतिहास 26 से 32 बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ है, जिसके द्वारा हम यशया की भविष्यवाणियों को उनके समय के संदर्भ में समझ सकते हैं। किसी भी भविष्यवाणी को समयकालीन ऐतिहासिक घटनाओं के साथ देखने से भविष्यवाणी समझने में बहुत आसानी होती है, अर्थात जिस राष्ट्र में वो भविष्यवाणी कर रहा था उसकी परिस्थिति क्या थी। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम 5 अध्याय राजा उज्जिया के राज्यकाल के समय के हैं। उज्जिया बहुत ही लोकप्रिय राजा था। अध्याय 6 में यशया राजा उज्जिया की मृत्यु का उल्लेख करते हुए अपने जीवन पर उसके प्रभाव का भी प्रदर्शन करता है। वो एक अत्यधिक समृद्ध राजा था। तो ये है यशया अध्याय 1 पद 1। आमोस के पुत्र यशया का दर्शन। ये भविष्यद् वक्ता आमोस नहीं है, क्योंकि इब्रानी भाषा में दोनों शब्दों के वर्तनी स्पेलिंग में अंतर है। यशया अध्याय 1 पद 1 में आगे लिखा है, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिया नाम यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। इससे ऐसा लगता है कि लोग कान बंद करके बैठे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इसराइल भविष्यद्वक्ता द्वारा दिए गए वचन को सुनने के लिए कदापि तैयार नहीं था। इसलिए वो आकाश और पृथ्वी को पुकार रहा है कि वे सुने। आपने भी कभी ऐसा अनुभव पाया होगा, आप बात किए जा रहे हैं परंतु श्रोता ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। कई बार तो मुझे बीच में रखे फूलदान को उठाना पड़ता है कि उनका ध्यान आकर्षित करूं। लोग उसकी बात पर कान नहीं लगा रहे थे, अतः पुकारना पड़ा। यशया पहला अध्याय पद 2। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा। वो आकाश और पृथ्वी को पुकार कर उन्हें साक्षी बनाता है कि उसने परमेश्वर का वचन निष्ठापूर्वक सुनाया है। यहां परमेश्वर यहूदा का अपराध स्पष्ट करता है। यदि आप उस युग का इतिहास देखेंगे तो जानेंगे कि उज्जियाह एक भला राजा था। उसके युग में यहूदा में बाहरी आत्मिक जागृति आई थी। लोग मंदिर जाने लगे थे और सबत का भी पालन करने लगे थे। वे फसा और अन्य पर्वों को भी मानने लगे थे, परंतु यहोवा ने उन्हें दोषी पाया और कहा। यशया अध्याय 1 पद 2 में आगे लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। परमेश्वर की पहली शिकायत थी कि उन्होंने परमेश्वर से बलवा किया। ध्यान दीजिए कि परमेश्वर यहूदा की प्रजा को अपनी संतान कह रहा है। पिता पुत्र की उपमा, वो आज हमें भी अपनी संतान कहता है। देखिए परमेश्वर क्या कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। वे पशुओं से भी बदतर हो गए, क्योंकि यशया अध्याय 1 पद 3, बैल तो अपने मालिक को और गदा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इसराइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। वे जानवरों से भी अधिक गिर चुके थे, गदा तक भी अपने मालिक की चरनी को पहचानता है, बैल भी अपने स्वामी को पहचानता है। कुछ वर्ष पहले इसराइल में एक अपराध हुआ और अपराधी अपने गधे को छोड़कर फरार हो गया। छानबीन करने वाले अधिकारी को थोड़ा बहुत धर्मशास्त्र का ज्ञान था। उसने आदेश दिया, उस गधे को खोल दिया जाए। गधा चल पड़ा और छानबीन करने वाले लोग उसके पीछे हो लिए। गधा सीधा अपने स्वामी के पास पहुंच गया। इस प्रकार अपराधी पकड़ा गया। गधा अपने स्वामी को पहचान सकता है तो परमेश्वर कहता है, इसराइल मुझे नहीं पहचानता, मेरे लोग मुझे स्वीकार नहीं करते, वे परमेश्वर के पालनहार होने को स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। परमेश्वर शिकायत कर रहा था, वे उसे पहचानते ही नहीं। यदि आपका कुत्ता आपको काटे और अजनबियों तथा चोरों के सामने दुम हिलाए तो आप ऐसे कुत्ते को कब तक सहन करेंगे? वो कुत्ता नहीं जानता कि उसका पालनहारा कौन है। आप उसका खाना बाहर फेंक देंगे और तुरंत ही उससे छुटकारा प्राप्त करेंगे। कृपया सोचें कि परमेश्वर हमारे साथ कैसा धीरज धरता है। वो हमें निकालकर फेंक नहीं देता है। पशु भी जानता है कि उसका स्वामी कौन है, कौन उसे भोजन देता है। परंतु परमेश्वर कह रहा था, मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते, इसराइल मुझे नहीं पहचानता। तीसरी शिकायत जो परमेश्वर को उनसे थी वो है यशया पहला अध्याय पद 4। हाय, ये जाति पाप से कैसी भरी है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये लड़के वाले कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इसराइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराए बनकर दूर हो गए हैं। दूसरे शब्दों में वे परमेश्वर से दूर होकर भटक गए हैं। वे परमेश्वर की ओर बढ़ने और परमेश्वर के निकट पहुंचने की अपेक्षा परमेश्वर की ओर पीठ करके परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। देखो परमेश्वर कितना बड़ा दोष उन पर लगा रहा है। तब परमेश्वर ने उनसे पूछा, यशया अध्याय 1:5, तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? वे कष्ट उठा रहे थे, राष्ट्र दुर्बल हो रहा था और पतन की कगार पर खड़ा था। बैरियों ने उन्हें लूट लिया था और उनके अनेक नगरों पर अधिकार कर लिया था। राष्ट्र की राजनीतिक अवस्था बिगड़ती जा रही थी। परमेश्वर उनसे कहता है, क्या इतना दंड पर्याप्त नहीं? क्या वे और अधिक दंड भोगना चाहते हैं? यशया अध्याय 1:5-6, तुम्हारा सर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है, पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए हैं। परमेश्वर से मुंह मोड़ लेने का परिणाम ये हुआ कि वे मारे पीटे गए, घायल किए गए, रक्त रंजित हुए, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी संतान की ताड़ना की, परंतु वे अब भी सबक सीखने को तैयार नहीं थे। वे अब भी परमेश्वर के पास नहीं आ रहे हैं। परमेश्वर पूछता है, तुम कब तक अपनी ताड़ना करवाना चाहते हो? ऐसा क्यों होता रहे? परमेश्वर के पास आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने सदैव एक बात आपसे कही है कि आप या तो अपना जीवन सरल बना सकते हैं या कठिन। अधिकांश मनुष्यों का स्वभाव यह है कि वे जीवन को कठिन बनाते हैं। आगे के कुछ अध्यायों में हमें पढ़ने को मिलेगा कि परमेश्वर कहता है, हाय उन लोगों पर जो अपने सृजनहार से बलवा करते हैं। परमेश्वर से बलवा करने का परिणाम हानिकारक एवं कष्टदायक ही होता है। आप उसे जीत नहीं सकते। आप क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? परमेश्वर कहता है, तुम पहले से ही घायल हो। अब परमेश्वर देश के उजाड़ हो जाने की बात करता है। उनके पापों के कारण परमेश्वर कहता है कि उनका देश लूटा गया है। यशया अध्याय 1:7, तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं। ये घावों, चोटों और दुखदाई मार के समान है। वो देश के तहस नहस होने का उल्लेख कर रहा है। यशया अध्याय 1:7-8, तुम्हारे खेतों को परदेशी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं। वो परदेशियों से नाश किए हुए देश के समान उजाड़ है, और सियोन की बेटी दाख की बारी में की झोपड़ी की नाई छोड़ दी गई है, या ककड़ी के खेत में के मचान या घिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है, नितांत अकेला जैसे कि घेराबंदी में पड़ा नगर। यशया अध्याय 1:9, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। यदि परमेश्वर उस देश की जनसंख्या के इस छोटे से भाग को छोड़ ना देता तो वे सब के सब सदोम और अमोरा की नाई नाश हो जाते, उजाड़ दिए जाते। यशया अध्याय 1:10, हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो। हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। परमेश्वर सदोम और अमोरा के विनाश का उदाहरण भी देता है और यरूशलेम की तुलना भी उनसे करता है। आज के पाश्चात्य संसार में सैन फ्रांसिस्को को सदोम और अमोरा कहा जाता है, क्योंकि वहां भी वही पाप है जो सदोम और अमोरा में था। उस युग में परमेश्वर ने यरूशलेम को सदोम और अमोरा कहा था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में योहन्ना भी इसी उपमा का प्रयोग करता है, जो आत्मिक सदोम है। ये यरूशलेम के लिए कहता है, क्योंकि वहां भविष्यत वक्ताओं को घात किया गया था। यशया अध्याय 1:11। यहोवा ये कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? अब परमेश्वर उनके धार्मिक जीवन के विषय में कहता है कि बाहरी दिखावा किसी काम का नहीं है। परमेश्वर हृदय को देखता है, ना कि बाहरी कामों को। आज भी बहुत से लोग हैं जिनके काम उचित है, परंतु मनोवृत्ति अनुचित है। ये बड़ी दुखद अवस्था है। प्रभु यीशु मसीह ने भी पहाड़ी उपदेश में ये स्पष्ट किया है। प्रभु यीशु मसीह ने मनोवृत्ति के महत्व को स्पष्ट किया है। यशया अध्याय 1:11-12। मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से आधा गया हूं। मैं बछड़ों, वो भेड़ के बच्चों, वो बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पाव से रौंदो? परमेश्वर कहता है कि मैंने तो नहीं कहा, मेरे आंगनों में आओ और धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ति करो। वे स्वयं ही मंदिर में आते थे और चढ़ावा लाते थे। वे सबत का दिन, पूरा चांद और अन्य पर्व मनाते थे। परमेश्वर ने यह भी कहा, मैं तो मेंढों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से आधा गया हूं, मुझे ये नहीं चाहिए। दाऊद ने बेतशबा के साथ पाप करने के बाद भजन 51 लिखा था, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर आपके बलिदान से अधिक आपके टूटे और पिसे हुए मन को देखता है। कलीसियाई इतिहास को देखने से कलीसिया के अगुओं द्वारा की गई बुराई को जब हम देखते हैं, जहां पर उन्होंने ऐसा संकेत दिया था कि मनुष्य अपने पापों की क्षमा को पैसा देकर खरीद सकता है, लोगों ने सोचा, जब तक आप कलीसिया को पैसा दे रहे हैं, तब तक जितना मर्जी पाप करें सब कुछ चलेगा। कलीसिया के अगुओं ने कहा, हम आपकी पीठ थपथपा के कह रहे हैं, ठीक है, पहली पंक्ति में बैठ जाओ, आपका नाम खिड़कियों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, आपका नाम यहां पर पंजीकृत है, आपने ढेर सारा धन दे दिया है, आप ही कलीसिया के लिए श्राप है। जब कलीसिया ऐसी शिक्षा देती है और लोगों को महसूस करवाती है कि अनुदान के कारण वे क्षमा किए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर का द्वार हमेशा खुला है। परमेश्वर मन को देखता है। परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दीजिए कि वो क्या कहता है। मैं अधा गया हूं, ये कौन कहता है कि तुम मेरे आंगनों को पाव से रौंदो? यशया अध्याय 1:13। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है, नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, ये मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे पवित्र धार्मिक क्रियाकलाप भी अधर्म से भरे हैं। यशया अध्याय 1:14। तुम्हारे नए चांदों और नियम पर्वों के मानने से मैं जी से भय रखता हूं, वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूं। परमेश्वर धर्म तंत्र से उकता गया है, क्योंकि धर्म मनुष्य के मन में नहीं है। यशया 1:15। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, वे जब सामूहिक प्रार्थना करते थे तब उनकी प्रथा के अनुसार वे अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते थे। परमेश्वर ने उनसे कहा, जब तुम अपने हाथों को ऊपर उठाओगे, अर्थात जब प्रार्थना करोगे। यशया अध्याय 1:15 में आगे लिखा है, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा, तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अमेरिका में सदर्न बैप्टिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष समस्या में पड़ गया था, क्योंकि उसने खुल्लम खुल्ला कह दिया था कि परमेश्वर किस व्यक्ति की प्रार्थना सुनता है और किसकी नहीं। यहां तो परमेश्वर स्वयं कहता है कि कुछ लोगों की प्रार्थना वो नहीं सुनेगा। जब वे हाथ ऊपर उठाते हैं तब वे और अच्छी प्रकार दिखाते हैं कि उनके हाथ लहू से रंगे हुए हैं। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर भी देता है, और यही प्रेरणा है कि हम प्रार्थना करते रहें। दूसरी ओर ये भी सत्य है कि परमेश्वर कुछ प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। दाऊद ने अपने भजन में लिखा है, यदि मेरे मन में अधर्म बसा हो तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। यशया अध्याय 59 में कहता है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। यहां परमेश्वर स्वयं कह रहा है, तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। यशया अध्याय 1:16-17। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। परमेश्वर की रुचि का विषय है कि न्याय निष्पक्ष हो और शोषित वर्ग की मुक्ति और अनाथों तथा विधवाओं के साथ न्याय का व्यवहार किया जाए। उनके आडंबर पापों के कारण उन पर आए हुए विनाश को स्पष्ट रूप से प्रकट करने के पश्चात परमेश्वर उन्हें पुकार कर कहता है कि वे मन फिराए और अधर्म का व्यवहार त्याग दे, भलाई करे और उन कामों को करे जिनसे यहोवा प्रसन्न होता है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि परमेश्वर चढ़ावे और बलि का इनकार करके कहता है कि वे अपना जीवन आचरण परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य रखें और शोषित वर्ग का उत्थान करें। अतः यशया अध्याय 1:18। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। परमेश्वर किसी को भी अंधविश्वास की चुनौती नहीं देता है। अंधविश्वास की उत्पत्ति कलीसिया के बाहर हुई है। अंधविश्वास बाइबल की या परमेश्वर की शब्दावली नहीं है। ये शब्द अस्तित्ववादी दार्शनिकों का परिभाषिक शब्द है। उनका ये मानना है कि सत्य ऊंचाई तथा बुराई सर्वभौमिक नहीं है, वे केवल व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि हरेक मनुष्य दूसरे से भिन्न है। हमें अपने व्यक्तिगत स्तर पर अच्छाई का अनुभव करना होगा। यदि आप वास्तविकता में जीवन व्यतीत करते हैं तो आप निराश ही रहेंगे। इस प्रकार उनकी सत्य की खोज की परिणाम ये हुआ कि वे निराश हो गए। निराशा अस्तित्व नहीं रखती है, वे केवल संबंधवाचक अनुभव है। अतः हम निराशा में जीवन व्यतीत करना नहीं चाहते। हम अंधविश्वास की छलांग लगा दें कि कहीं ना कहीं तो हम गिरेंगे, और जब गिरेंगे तो संभाले भी जाएंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है, परंतु हमें विश्वास की छलांग लगाना आवश्यक है, जिससे कि हमें वो परम अनुभव संभवतः प्राप्त हो जाए। संभावनाओं को मानकर छलांग लगा दो। जर्मनी में एक प्रोफेसर था जिसके विद्यार्थियों में से अनेकों ने आत्महत्या की। विद्यार्थी उसके व्याख्यान के बीच में कहते थे, हम नहीं जानते कि आत्महत्या परम अनुभव है। हो भी सकता है, परंतु हमें विश्वास नहीं है। हक्सली ने भी सोचा कि एलएसडी नशे की गोलियां खाकर मरने से परम अनुभव प्राप्त होगा। जब वो मरने वाला था, उसने बहुत सारी गोलियां खा ली। उसने सोचा था कि ये परम अनुभव है, संभव है, रहा होगा। अतः यदि आप निराशा में जीवन व्यतीत करना नहीं चाहते, तो आपको तर्कहीन धार्मिक अनुभव के लिए विश्वास की छलांग लगानी होगी। यही कारण है कि आज पूर्वी धर्म, तंत्र मंत्र आदि लोकप्रिय होते जा रहे हैं। आज कोई गुरु खड़ा होकर तेज आवाज में कह दे, मेरे पास फूल है, मैं स्वयं को प्रेम रखता हूं आदि, तो सबके सब अपनी नाभि में ध्यान केंद्रित करके जपने लगेंगे ओम। क्योंकि इस प्रकार के आंतरिक ध्यान के कारण मनुष्य परिवर्तित चैतन्यता में प्रवेश कर जाता है, जिसके द्वारा वे मूर्छों में आ जाते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। वे स्वयं इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। वे कहते हैं, इस प्रकार उन्हें सृजन शक्ति की संगति प्राप्त होती है। एक ऐसे अनुभव को पाने के लिए जिसे वे स्वयं नहीं जानते, अनेक लोग सर मुंडाकर, चोगे पहनकर नाचते फिरते हैं। ये तर्कहीन धार्मिक अनुभव है जो परिवर्तित चैतन्यता के कारण आता है। उनका दर्शन शास्त्र भी यही कहता है कि हमें अनुभव करने की आवश्यकता है। आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव प्राप्त करना है, ताकि आप इस बात को जान पाएंगे कि आपके लिए उपयुक्त या अर्थपूर्ण या सही क्या है। परमेश्वर ये सब नहीं कहता है। वो अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है। वो तो कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। परमेश्वर चाहता है कि आप सोचे और समझे। परमेश्वर आपको हर बात का कारण समझाएगा। वो आपको समझाएगा कि आप परेशान क्यों हैं, आपके भीतर उतल पुतल क्यों हो रही है, आपको अपने भीतर खोखलापन क्यों लगता है। वो आपको विश्वास और आस्था रखने का कारण भी समझाएगा। परमेश्वर क्या बताने जा रहा है, वो है इस पुस्तक की भविष्यवाणी। परमेश्वर ने स्वयं इस पुस्तक को लिखा, जिसका ये मजबूत प्रमाण है कि परमेश्वर जानता था कि वो भविष्यवाणी दे रहा है। अध्याय 41 में परमेश्वर ने झूठे देवी देवताओं को चुनौती दी कि वे उन कारणों को सामने लाए और घटनाओं के घटने से पूर्व वे हमें उसकी सूचना दे, जिससे कि जब वो घटना घटे तो हम जान ले कि तुम ईश्वर हो। उसने कहा कि आकाश और पृथ्वी पर चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म दिखाओ कि हम जान ले कि तुम सच्चे देवी देवता हो। अपने आप को सिद्ध करो, प्रमाण दो। आंख बंद करके अपनी उपासना की आशा हमसे मत रखो, कुछ प्रमाण दो। परमेश्वर ने कहा, ताकि तुम जान पाओगे कि मैं परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें आने वाली घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैंने तुम्हें वे बातें बता दी है जो होने वाली है, जिससे कि जब वे पूरी हो तो तुम विश्वास करो। जो आपके विश्वास का आधार बने, न कि अंधविश्वास विश्वास का आधार बने। घटित होने वाले घटनाओं के बारे में पहले से ही बता रहा हूं, ताकि तुम विश्वास करो। इसका तर्क है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। यहोवा अब इन विद्रोही इसराइलियों को, जो पशुओं से अधिक गिर गए थे और घावों से भरे थे, जिनके हाथ रक्त रंजित थे, चुनौती देता है। यशया अध्याय 1 पद 18 में आगे लिखा है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो। लाल रंग की अपनी पृष्ठभूमि है। लाल रंग से उन दिनों में कपड़ों में दो बार बलि भांति रंग लगाकर सुखा दिया जाता था, तब फिर से एक बार रंग में डुबोकर बहुत देर तक रखा जाता था, जिससे कि उसके ताने बाने में रंग पूरी तरह व्याप्त हो जाए और उसका रंग कभी न उड़े। ठीक उसी तरह मनुष्य पाप करते करते इतना अधिक अभ्यस्त हो गया है कि पाप उसके रोम रोम में समा गया है, कि पाप उसका दूसरा स्वभाव बन गया है। मनुष्य जन्म से ही पापी है, परंतु जब ये आपका दूसरा स्वभाव बन गया है तो आप बड़ी मुश्किल में हैं। आप एक महापापी हैं। आपके स्वभाव के कारण आप बिना सोचे पाप कर बैठते हैं। क्यों? ये आपका दूसरा स्वभाव बन चुका है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा व्यक्तित्व चाहे दो बार पाप में व्याप्त हो गया हो और रोम रोम में समा गया हो। यशया अध्याय 1 पद 18 में अंत में लिखा है, तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। एक पापी के लिए परमेश्वर का कैसा अद्भुत प्रस्ताव! निस्संदेह ये अनुग्रह का प्रस्ताव है। आप अपने प्रयास से सफल नहीं होंगे। आप बलिदानों और चढ़ाओं के द्वारा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर तो उनसे अधा गया है। आओ हम बैठकर सोचें, तुम्हारी कैसी भी पापी दशा हो, तुम हिम की नाई उजले हो जाओगे। मैं तुम्हें नया बना दूंगा, परंतु शर्त यह है कि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। अब ये निर्णय आपके हाथों में है कि आप आज्ञाकारी होना चाहते हैं या नहीं। परमेश्वर किसी को बाध्य नहीं करता, क्योंकि उसने मनुष्य को चुनने की क्षमता के साथ रचा है। यदि परमेश्वर आपके चुनाव का आदर ना करे तो स्वतंत्र इच्छा व्यर्थ है। यशया अध्याय 1 पद 19 और 20। परमेश्वर ने कहा, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। ये भूमि जो आज निर्जन और वीरान पड़ी है, जिस पर उनके बैरियों का अधिकार है, पुनः उनके अधिकार में होगी और उनके लिए फल उत्पन्न करेगी। यशया अध्याय 1 पद 20 में आगे लिखा है, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा की यही वचन है। देखो, सीधी सी बात है, तुम्हें चुनने का अधिकार है। आज्ञाकारी बनोगे तो तुम्हें अच्छी अच्छी वस्तुएं अर्थात आशीषें प्राप्त होगी, और यदि नहीं तो तुम देश से निकाले जाओगे। इच्छा से निर्णय करना आपके हाथों में है। ऐसी बात है तो परमेश्वर के अनुग्रह और क्षमादान को प्राप्त करने में ही भलाई है। समझदारी का काम तो यही है, अन्यथा मौत ही लिखी है। अतः विद्रोह करना मूर्खता है। परमेश्वर यरूशलेम से कहता है, यशया अध्याय 1:21, जो नगरी सती साध्वी थी वो कैसे व्यभिचारिन हो गई। यहां ध्यान रखिए कि ये बातें आत्मिक परिप्रेक्ष्य में की जा रही है। जिस नगर को परमेश्वर ने चुनकर अपना निवास स्थान बनाया था, उसकी प्रजा वहां उसकी आराधना करने आए, वो नगर अपने परमेश्वर को त्याग कर मेमोन, मोलेक और बाल अन्य देवताओं के पीछे हो लिया और वहां उनके उपासना स्थान बना दिए। हाल ही में किए गए पुरातत्व विभाग की खुदाई में, जो गीहोन के झील से लेकर शिनो के कुंड तक और वहां से मंदिर की चोटी तक, उसमें से मिली जानकारियां बहुत ही रोचक है, जिसमें यरूशलेम शहर के प्राचीन खंडर, यशया के समय के कुछ पुराने घर और यरूशलेम के पतन के समय की कुछ जानकारियां प्राप्त हुई है। इन्हें नबुकदनेस्सर ने ध्वस्त कर दिया था और इन मकानों में अद्भुत चीजें मिली हैं, जिनमें अन्य जातियों के देवताओं की अनेक छोटी छोटी मूर्तियां हैं। इनसे ये सिद्ध होता है कि भविष्यत वक्ताओं द्वारा यहूदा को दी गई आने वाले विनाश की भविष्यवाणियां सत्य थी, और यशया ने भी कहा था, जो नगरी सती थी क्यों व्यभिचारिन हो गई। यहूदा ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसी बारे में यरमिया भी कहता है, तुमने जीवन के जल के सोते को त्याग दिया है और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए हैं जिनमें पानी ठहरता ही नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें व्यभिचारिन की उपमा दी थी। यशया अध्याय 1:21 से लेकर 23 तक। वो न्याय से भरी थी और उसमें धर्म पाया जाता था, परंतु अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते हैं। तेरी चांदी धातु का मैल हो गई, तेरे दाख मधु में पानी मिल गया है, तेरे हाकिम हटीले और चोरों से मिले हैं, वहां रिश्वतखोरी बहुत प्रबल थी। यशया अध्याय 1:23 में आगे लिखा है, वे सब के सब घूस खाने वाले और भेंट के लालची हैं। इस कारण उनका न्याय भ्रष्ट हो चुका था। यशया अध्याय 1:23 के अंत में लिखा है, वे अनाथ का न्याय नहीं करते और ना विधवा का मुकदमा अपने पास आने देते हैं। रिश्वतखोरी के कारण न्यायपालिका पूरी की पूरी भ्रष्ट हो चुकी थी। यशया अध्याय 1:24। इस कारण प्रभु सेनाओं का यहोवा इसराइल के शक्तिमान की ये वाणी है, सुनो, मैं अपने शत्रुओं को दूर करके शांति पाऊंगा और अपने बैरियों से पलटा लूंगा। कैसा विनाशकारी स्वभाव कि परमेश्वर के अपने जन उसके बैरी हो गए। यशया अध्याय 1:25-26, और मैं तुम पर हाथ बढ़ाकर तुम्हारा धातु का मैल पूरी रीति से भस्म करूंगा और तुम्हारा रोग पूरी रीति से दूर करूंगा, और मैं तुम में पहले की नाई, न्यायी और आधिकाल के समान मंत्री फिर नियुक्त करूंगा। उसके बाद तू धर्म पूरी और विश्वासयोग्य नगरी कहलाएगी। परमेश्वर ने यहूदा अर्थात यरूशलेम शहर को अंधेरे में धकेल दिया था। ऐसा मानो कि यरूशलेम की छवि के ऊपर परमेश्वर ने कालिक पोत दी हो, पूर्णतः गहरा काला कर दिया था, परंतु अभी उस कालेपन के ऊपर उजाला आशापूर्ण भविष्य का चित्र अंकित कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर उनकी गंदगी को साफ करने जा रहा है, उनके न्यायियों और सलाहकारों को फिर से स्थापित करेगा। पुनर्स्थापन के बाद यरूशलेम का नाम होगा धार्मिक एवं विश्वास योग्य नगरी। अभी तो ये नगरी वेश्या है, परमेश्वर से दूर है, परंतु वो फिर से अपने स्वामी के प्रति विश्वास योग्य ठहरेगी। यशया अध्याय 1 पद 27 से लेकर 29 तक। सियोन न्याय के द्वारा और जो उसमें फिरेंगे वे धर्म के द्वारा छुड़ा लिए जाएंगे, परंतु बलवाइयों और पापियों का एक संग नाश होगा, और जिन्होंने यहोवा को त्यागा है उनका अंत हो जाएगा, क्योंकि जिन बांज वृक्षों से तुम प्रीति रखते थे उनसे वे लज्जित होंगे, और जिन बैरियों से तुम प्रसन्न रहते थे उनके कारण तुम्हारे मुंह काले होंगे। यरूशलेम में बांज वृक्षों और वाटिका की पूजा होने लगी थी। अन्य भविष्य वक्ताओं ने भी इसका उल्लेख किया है। इन पेड़ों को अपने बगीचों में लगाना तथा उनकी पूजा आदि करना उन लोगों ने आरंभ कर दी थी। यशया अध्याय 1 पद 31। और बलवान तो सन और उसका काम चिंगारी बनेगा, और दोनों एक साथ जलेंगे और कोई बुझाने वाला ना होगा। परमेश्वर अधर्म को मिटा देगा, वो अधर्म के दोषियों को नाश कर देगा। बलवंत सन की नाई होगा। सन के मूल शब्द का अर्थ है मैल उतार कर फेंक देना। परमेश्वर अपराध का अंत कर देगा, वो अधर्मियों का नाश कर देगा। उनकी मूर्तियां टूटी रस्सी है और उसका रचने वाला चिंगारी है, दोनों ही भस्म हो जाएंगे।